आप सभी लोगों का खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर भगवान हरि की चर्चा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाल कर आए हैं, इसलिए आप सभी को विशेष धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग मुझसे काफ़ी बड़े हैं, मेरे माता पिता की उम्र के हैं, तो सभी लोगों सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। आज हम लोग भगवत चर्चा करने वाले हैं, लेकिन भगवत चर्चा जो है वो भक्तों की चर्चा से अभिन्न है, इसलिए आज हम लोग पांडवों के जीवन के विषय पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों को पांडवों के बारे में सुना है, से कथा प्रारंभ कर रहा हूँ जहाँ से महाभारत का युद्ध हो गया। पांडवों ने कौरवों को परास्त कर दिया और युधिष्ठिर महाराज राजा बनने वाले थे, बनने वाले थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने ये विचार किया कि अब मेरा कार्य हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए द्वारका। चार महीने से भगवान हस्तिनापुर में रुके थे, तो भगवान की बहुत सारी पत्नियां थी वहां पर द्वारका में उनका इंतजार कर रही थी। तो भगवान ने विचार किया कि अब मुझे चलना चाहिए, तो भगवान रथ पर बैठे और भगवान चलने के लिए निकल पड़े। उस समय कुंती महारानी, पांडवों की जो जननी है, वो कुंती महारानी भगवान को रोकती और भगवान को प्रणाम करती है। तो भगवान कहते हैं प्रणाम की करीब हुआ तो कुंती कहती है कि आपको प्रणाम नहीं करती, किसको प्रणाम करूं? आप यद्यपि आप मुझे बुआ बोलते हो और आपका मेरा वो संबंध है, लेकिन वास्तव में आप कौन है मैं जानती हूँ। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, इस सृष्टि को निर्माण करने वाले, मेंटेन करने वाले, इसका संभाल करने वाले आप, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कुंती महारानी एक स्त्री है, वास्तव में समस्त ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों को शास्त्रों का ज्ञान कम होता है, लेकिन ऐसी बात है, कुंती महारानी की शिक्षा श्रीमद् भागवत में बहुत, मतलब सबसे पहली जो स्तुति है श्रीमद् भागवत में कुंती महारानी की। कुंती महारानी ने जो उद्गार किया है भगवान के लिए, इसको कुंती स्तुति कहा जाता है। तो कुंती महारानी भगवान को प्रणाम करती है, उनकी स्तुति करती है और याद करती है कि हे प्रभु, आपने हमें कितने बड़े बड़े संकटों से आपने मुझे बचाया है। एक तो मैं बहुत जल्दी विधवा हो गई, विधवा होने के बाद धृतराष्ट्र महाराज और उनके पुत्रों, धृतराष्ट्र महाराज ने हमें आश्रय तो दिया, लेकिन उनका और उनके पुत्रों ने हमेशा हमें मारने का प्रयास किया, हमेशा छल कपट किसी न किसी बहाने से हमें बहुत दुख दिया। कुंती महारानी याद करती है, जब भीम छोटा था तो भीम को विष पिलाकर उन्होंने समुद्र में डाल दिया, और समुद्र में डाल देने के बाद भीम किसी तरह से भगवान की कृपा से वहां पे नागलोक में पहुंची और नागलोकों ने उसको स्वागत किया, सारे नागों ने उसको पंजे में डस लिया। तो जो भीम ने जो विष पिया था वो सारा विष नागों के डसने से बाहर आ गया, निकल गया, और भीम फिर से होश में आ गया। तो भीम ने देखा मैं कहाँ हूँ, तो पता चला कि वो वरुण लोक में है। तो सबने उसको पूछा कि तू है कौन, तो मैं कुंती नंदन हूँ। जैसे कुंती नंदन का नाम सुना तो वरुण देव ने उनको प्रणाम किया और उनका आदर सत्कार किया। छोटे से भीम थे, लेकिन उनको फिर वरुण देव जी ने दस प्यालों में उनको ऐसी दिव्य अमृत पिला दिया जिससे भीम में 10,000 हाथियों का बल आ गया। एक एक कटोरे में 1,000 हाथियों का बल से 10 पिला दिया और भीम अधिक बलशाली होकर फिर से लौट पड़ा। उसके बाद जब पांडव लोग बड़े हुए उस समय भी लाक्षाग्रह बनाकर उनको मारना चाहा, कि पारिवारिक वैर था उन दोनों कौरव और पांडव में। तो कुंती महारानी याद करती कैसे कैसे आपने हमें रक्षा की थी। एक बार की घटना है कि पांडव वन में थे, वनवास हो गया था उनको, और दुर्योधन के पास दुर्वासा ऋषि आए थे। अब ये दुर्वासा ऋषि जल्दी प्रसन्न भी होते हैं, जल्दी क्रोधी भी होते हैं। तो दुर्योधन ने कहा दुर्योधन ने उनकी अच्छे से सेवा की, क्योंकि उसके पास तो समग्र सब सामग्री थी, सारे सारे नौकर चाकर थे, दुर्योधन ने उनकी अच्छे से सेवा की। लेकिन दुर्योधन ने एक रिक्वेस्ट किया कि हे दुर्वासा ऋषि, यदि आप उसके प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पांडव लोग थोड़ा नजदीक में वन में है, तो आप लोग पांडवों के पास चले जाइए, 4 बजे के बाद चले जाइए, शाम के समय चले जाइए, तो उस वो उनको भी थोड़ा अवसर प्रदान कीजिए कि उनको आप लोग वो आप लोगों की सेवा कर सकते। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों सहित वहां पर पहुंच गए, और जब वहां पर अर्थात एक घड़ा था जो उसको किसी साधु ने दिया था, तो वो घड़े से सब लोगों के लिए अन्न अपने आप बन जाता था, लेकिन यदि वो खा ले उसके बाद उस दिन अक्षय पात्र काम नहीं करेगा। और दुर्योधन ने एकदम बिल्कुल उन लोगों को उस शाम के समय भेजा। जब वो पहुंच गए वहां पर, तो युधिष्ठिर महाराज उनका स्वागत किया दुर्वासा ऋषि का, और दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि युधिष्ठिर हम लोग जरा नहा कर आते, तुम हमारे खाने पीने का प्रबंध करो। और दुर्वासा ऋषि अकेले तो आए नहीं थे, 10,000 शिष्यों के साथ आए थे। अभी आपके यहाँ पर अचानक से 10,000 लोग आ जाए, और आप लोग बोला कि माताओं जरा प्रसाद बनाई है, तो आप अगर 10-50 करेंगे तो बोलेंगे बाप रे, बहुत बड़ा संकट आ गया है। और जब वहां पर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया, और जैसे स्मरण किया वहां पर से द्रौपदी को रथ घोड़े घोड़े से आते हुए घोड़ा घाड़ी की आवाज आ गई, तो भगवान अपने रथ पर से आ रहे थे, और वहां पे आके वहां पर रुक गए। द्रौपदी कृष्ण, द्रौपदी का नाम था कृष्ण, मुझे बहुत भूख लगी है, लो इधर भूख का टेंशन है और इनको भी भूख लगी है, मतलब कुछ नहीं है मेरे पास, इतना बड़ा संकट में हम लोग पड़े और आपको भी भूखी नहीं है। तब भगवान ने कहा द्रौपदी जरा जाओ और वो अक्षय पात्र ले आओ, उसमें एक शाक का टुकड़ा पड़ा हुआ। बोले नहीं है, मैं खा चुकी, कुछ नहीं पड़ा, तो जाओ ले आओ। तो जब द्रौपदी लेकर आती है, तब भगवान उसमें से एक शाक का, उसमें शाक का एक टुकड़ा रहता है, वो लेके खा लेते हैं। तो जैसे ही भगवान खा लेते हैं, समस्त संसार तृप्त हो जाता है, और ये जो दुर्वासा ऋषि और जो उनकी हालत क्या होगी, वो डकार मारते बाहर आते हैं, नहा रहते हैं, जैसे नहा कर बाहर आते ओ डकार आते होते, ओ पेट भरा हुआ है आपका, हाँ पेट भर गया है, तो एक दूसरे से बात करते कि अरे बाप रे। तब वो लोग बोलते अरे वहां पर युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बड़ा प्रबंध किया होगा खाने का, और यहाँ पे हम लोग का पेट भर गया है, और इतना पेट भर गया कि हम लोग एक दाना आधा दाना खा सकते हैं, और ऐसे समय में यदि हम लोग वहां पर जाएंगे तो और कुछ खाएंगे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, बाप क्या करें, भाग चलो। कुछ लोग आकाश में जाओ, कुछ लोग पानी में गायब हो जाओ, अपने सिद्धियां इस्तेमाल करो, क्योंकि पांडव है, भगवान कृष्ण के प्रेमी भक्त है लोग, इनसे पंगा नहीं ले सकते। एक बार पहले अमरीश महाराज से पंगा ले लिया था तो सुदर्शन चक्र पीछे बढ़ गया था, तो अब हमें पंगा नहीं लेना है, तो सब लोग गायब हो जाओ, तो सब गायब हो गए। और यहाँ पर कृष्ण द्रौपदी से, यहाँ पर कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं टेंशन मत लेना, सबका पेट भर गया, और भीम जरा जाओ और दुर्वासा ऋषि को बुला के ले आओ। क्या प्रभु यहाँ पर खाने पीने का कुछ है नहीं, और उनको बुला कर करेंगे क्या, ये तुम जाकर ले आओ। तो भीम जाते हैं गंगा के तट पर, जाते हैं देखते हैं कि सब लोग है कि नहीं, कहाँ गए, बुलाने के लिए जाते हैं तो कोई उनको बताता है अरे ये तो सब भाग गए, कोई आकाश में उड़ गया, कोई पानी में चला गया, कोई धरती में समा गया, इस तरह सब गायब हो गए। तो इस तरह से कुंती महारानी याद करती किस तरह से दुर्योधन ने कपट के माध्यम से लाक्षाग्रह बनाया था, और लाक्षाग्रह में उनको मारने का बहुत बड़ा प्रयास था, लेकिन किसी तरह से विदुर जी की सहायता से उन लोगों को पहले ही पता चल गया, और वे लोग किसी तरह से बच गए, भगवान की कृपा से बच गए। फिर कुंती याद करती है कि किस तरह से द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था। द्रौपदी कुंती महारानी याद करती है, ए भाई सब भगवान से कह रही है, कुंती भगवान रथ पर बैठे हैं, भगवान द्वारका के लिए निकल रहे हैं, और कुंती महारानी उनको रोक कर ऐसा कह रही है, उनको याद करी, उनको धन्यवाद दे रही है, कोई अगर हमें सहायता करता है तो हमें उनको उसका धन्यवाद देना चाहिए। तो विचार कैसे जो सामान्य व्यक्ति भगवान हमें ऑक्सीजन हमारे नाक तक ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, हमें खाने को दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो हमें उनका धन्यवाद नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो कुंती महारानी हमें सिखा रही है, और कितने भी संकट आ जाए हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। तो कुंती महारानी याद कर रही है कि प्रभु मुझे याद है कि द्रौपदी जब किसी तरह जब पांडवों को कपट द्वारा हराया गया था, और पांडवों ने जब द्रौपदी को दांव पर लगाया था, जैसे वैसे तो द्रौपदी दांव पर लगाने वाली वस्तु थी नहीं, लेकिन द्रौपदी को दांव पर लगाया गया, जबरदस्ती लगाया गया, और जब वो हार गई तब दुशासन ने उसको भरी सभा में लाकर नग्न करने का प्रयास किया था, मुझे याद है। तब द्रौपदी सबसे भीख मांग रही थी कि मैं आपके घर की कुल वधू हूं, मैं आपकी कुल वधू हूं। भीष्म पितामह से कहती है, द्रोणाचार्य से कहती है, धृतराष्ट्र महाराज से कहती है, मुझे बचा लीजिए, मैं आपके घर की कुल वधू हूं, मुझे इस तरह से नग्न होने से आप कैसे देख सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती? कहां गया आपका धर्म, कहां गया आपका ज्ञान? विदुर जी से कहती है, और अपने पति पांच पांडव संसार में उनके जैसा योद्धा कोई है नहीं, गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, नकुल सहदेव, युधिष्ठिर महाराज, उनके जैसा भी कोई योद्धा था क्या? वो अकेले 5 साल संसार के लिए काफी थे, लेकिन वे आज हाथों में हाथ धरे बैठे हुए थे, उनकी पत्नी वहां पर लग्न हो रही थी, वो कुछ नहीं कर रहे। तब द्रौपदी को याद आया कि उसके गुरु जी दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि बेटा जब भी तुझ पर बहुत बड़ा संकट आ जाए तो कृष्ण को याद करना। तो द्रौपदी ने एक हाथ साड़ी पकड़ी थी और एक हाथ से कृष्ण को बुला रही थी, कृष्ण कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन कृष्ण को आगे रहे, कृष्ण को चाहिए संपूर्ण समर्पण। फिर द्रौपदी ने विचार किया कि इस दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल है, मैं अबला स्त्री क्या इससे लड़ सकती हूं? चलो, तो उसने अपना दोनों हाथ उठाकर पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया, हे प्रभु मेरी लाज रखो प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर साड़ी का अवतार ले लिया, इतने सारे अवतार लेते हैं, प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार ले लिया, ध्रुव के लिए भगवान हरि के रूप में आ गए, गजेंद्र के लिए दौड़ पड़े। तो उसी तरह से अपने भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साड़ी का अवतार ले लिया, दुशासन खींचते जा रहा है और बोल रहा है, सारी में नारी है कि नारी में सारी है, कि सारी ही कि नारी ही नारी, क्या है ये, कौन है ये, इसके शरीर में से साड़ी कैसे निकल रही है? और 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन बेहोश होकर गिर गया। और तब कुंती महारानी भगवान की स्तुति में याद करिए कि किस तरह से आपने हमारी पग पग में आपने हमारी रक्षा की है। तो कुंती महारानी कहती है, प्रभु आप अभी जा रहे हैं, आपने हमारा जीवन अभी ऐसा कर दिया कि हमें हमारे जीवन में संकट नहीं, हमारे सारे सारे जो शत्रु सारे मर गए, अभी हमारे जीवन में कुछ है नहीं, इसलिए आप जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे पग पग पर संकट आ जाए, क्योंकि पग पग पर मुझे आप मिलेंगे, इसलिए मुझे पद पद पर संकट चाहिए। कि हम लोगों में किसी में ऐसी हिम्मत है कि भगवान से बोले, भगवान क्षण क्षण मुझे संकट दे दो, इतनी शक्ति सामर्थ्य हम लोग में है, ऐसी बोलने की सामर्थ्य नहीं है भगवान को कि दीजिए हम, क्योंकि हमारा कृष्ण में इतना प्रेम नहीं है। जब कृष्ण में प्रेम हो जाएगा, जब हमें पता चलेगा कि संकट आएगा तो कृष्ण मिलेंगे, तो ऐसे संकट हमें चाहिए। तो कुंती महारानी इस तरह से भगवान से बात करती है और कह और इस तरह स्तुति करते करते फिर युधिष्ठिर महाराज आ जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज आके कहता है, प्रभु थोड़ा रुक जाइए ना, थोड़ा दो चार महीने और रुक जाइए, दो चार दिन और रुक जाइए, थोड़ा और रुक जाइए। तब भगवान श्री कृष्ण सबकी बात मानते, कुंती महारानी फोर्स कर रही थी, सबकी बात मानते हैं, कुंती महारानी और धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडवों की बात मानते हुए भगवान श्री कृष्ण थोड़े दिन और रुक जाते हैं आश्रम, क्योंकि उनका एक और काम बाकी था भगवान का। युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध में युद्ध तो जीत लिया था पांडवों ने, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को एक शोक हो गया था, सदमा लग गया था। सदमा क्या था कि मेरे कारण इतने लोगों का सम्मान हो गया, मेरे कारण इतने सारे लोग युद्ध में मारे गए, तो उस मरे हुए लोगों का जो पाप है वो मेरे सर पर है, ऐसा युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे। वास्तव में ये धर्म युद्ध था, भगवान की इच्छा से किया युद्ध था, भगवान की इच्छा से किया जो भी कार्य है। युधिष्ठिर महाराज ने तो भगवान की आज्ञा का पालन किया, युधिष्ठिर महाराज तो सही थे, धर्म अपने धर्म में चल रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज शोक के कारण रो रहे थे। तो फिर वेद व्यास जी उनको समझाने लग गए, वहां पर सारे ऋषि मुनि वहां पर जुड़ गए, अरे युधिष्ठिर महाराज राज्य स्वीकार कीजिए, आप अभी युद्ध हो चुका है तो अभी आप राज्य स्वीकार कर लीजिए, आप राजा है, विश्व पितामह तक ने कहा कि आप राजा है, दुर्योधन ने खुद कहा था कि युधिष्ठिर राजा है, मरते समय उसने कह दिया कि युधिष्ठिर अभी राजा है। तब सारे ऋषि मुनि समझा रहे थे, वेद व्यास समझा रहे थे और भी कई ऋषि थे वो समझा रहे थे, भगवान उनको समझा रहे थे, हे महाराज युधिष्ठिर आप राज्य स्वीकार कर लीजिए। लेकिन इन सब के कहने के बावजूद भी युधिष्ठिर महाराज तो अपने शोक में पड़े हुए थे, नहीं मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, उसका ये पाप का निवारण हो ही नहीं सकता। तब सबने कहा ठीक है, आप युधिष्ठिर महाराज आपको मेरी बात हमारी बात पर विश्वास नहीं है, हम ऋषियों की बात पर विश्वास नहीं है, लेकिन आपको भीष्म पितामह पर विश्वास है। तुमने हाँ भीष्म पितामह पर हम लोग पूर्ण विश्वास है। कैसे? क्योंकि भीष्म पिता पहले का तो 400 साल से जी रहे थे और युधिष्ठिर महाराज को पता था कि भीष्म पितामह सारे धर्म के ज्ञाता है, वेद धर्म, भागवत धर्म, स्त्री धर्म, क्षत्रिय का धर्म क्या है, ब्राह्मणों का धर्म क्या है, सब प्रकार के धर्मों के महाराज भीष्म पितामह ज्ञाता थे। तो सबका यह निर्णय हुआ कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह को जाके मिलेंगे। तो सब लोग, सारे पांडव, भगवान श्री कृष्ण और बहुत सारे ऋषि वहां पर चले गए, कहां पे? कुरुक्षेत्र में। वहां पे कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हुए थे, तो उस समय वहां पे सब लोग गए और सब में महाराज युधिष्ठिर ने, पांडवों ने, सब ने भगवान श्री कृष्ण ने भी भीष्म पितामह को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह को बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, विविध धर्मों के बारे में प्रश्न पूछते हैं, पर भीष्म पितामह उत्तर देते हैं, तो वो सब महाभारत में है। उसके बाद सारे धर्मों के बताने के बाद भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर मैं तुमको एक बहुत विशेष बात बताना चाहता हूँ। तो विशेष बात यह है कि तुम राज्य स्वीकार कर लो। बोले क्यों? युधिष्ठिर महाराज कहते क्यों? क्योंकि ये कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण की इच्छा है तो क्या? कृष्ण तो हमारा रिश्तेदार है, कृष्ण क्यों? कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की बात मैं क्यों मानूं? विश्व पितामह कहने लगे कि जिस कृष्ण को तुमने अपना सारथी बनाया, तुमने उसको अपना संदेश वाहक बनाया, तुमने उसको अपना दूत बनाया, तुमने उससे इतने सारे काम करवा लिए, वो श्री कृष्ण जानते हो कौन है? वो श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि और शिव के स्वामी है। वो श्री कृष्ण इस समस्त पृथ्वी के, समस्त जग के रचयिता है। वो साक्षात सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉडहेड है, वो परमेश्वर है। यहाँ बहुत सारे संसार में ईश्वर है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है। कौन बता रहा है? भीष्म पितामह बता रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज और सब पांडव याद कर रहे थे भीष्म पितामह, भीष्म पितामह सब ये सब भगवान की स्तुति में बता रहे हैं कि देखो कौन है ये, इसको इनको समझो, ब्रह्मा शिव आदि इनके किंकर है, इनके दास है, इस तरह से फिर उन लोगों ने स्वीकार कर लिया, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान की बात को स्वीकार कर लिया और राजा बन गए। और युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सुंदर राज्य किया, बहुत सुंदर। जिस तरह से राम राज्य की प्रशंसा की जाती है उसी तरह से महाराज युधिष्ठिर का भी प्रशंसा की जाती है, महाराज युधिष्ठिर के राज्य की प्रशंसा की जाती है। फिर कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण स्वधाम अपने जाने का समय आ गया। भगवान श्री कृष्ण वहां से द्वारका चले गए, द्वारका में कुछ समय रहे और वहां से फिर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम नित्य धाम वैकुंठ जाने का निर्णय कर चुके थे। इसका अर्थ है कि भगवान के चरण कमल इस पृथ्वी पर भी नहीं रहने वाले। भगवान ने अपनी लीला 125 वर्ष भगवान इस पृथ्वी पर रहे थे, भगवान ने अपनी बहुत सारी विविध लीलाएं की, अपने भक्तों का पोषण किया, असुरों का वध किया और अब भगवान जाना चाहते थे। लेकिन एक कार्य बचा था, यदुकुल का विनाश, भगवान के अपने व्यक्तिगत परिवार का विनाश बचा था। किसी तरह से ऋषियों के माध्यम से शाप भगवान ने अपने परिवार का विनाश करा दिया और विनाश करा कर फिर भगवान प्रभास क्षेत्र से भगवान अपने धाम में चले गए। उसके बाद जब ये खबर बहुत समय से भगवान के विषय में खबर नहीं आ रही थी कि भगवान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऋषि महाराज ने अर्जुन को भेजा, अर्जुन जरा द्वारका जाओ, पता तो लगाओ कि भगवान कर क्या रहे हैं। तो जब अर्जुन वहां चले गए तो अर्जुन ने देखा कि यहाँ पर तो सब यदुवंश का विनाश हो गया है, भगवान अपने धाम चले गए और मुझे बताया तक नहीं, इतना बड़ा कपट मेरे साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण जो मेरे प्रियतम है, जो मेरे सखा है, जो मेरा सब कुछ है, वो बिना बताए मुझे छोड़कर चले गए। तो अर्जुन को बहुत दुख हुआ और अर्जुन को अपने गांडीव पर बहुत भरोसा था, लेकिन वो भरोसा, वो जो कॉन्फिडेंस था, वो सब खत्म हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ही नहीं रहे। तब अर्जुन को पता चला कि मेरे अंदर जो बल था वो भगवान का दिया हुआ था, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं था कि मैं महाभारत जैसे युद्ध को जीत सकूं, लेकिन भगवान नहीं है, अब मेरे अंदर गांडीव धनुष तो है लेकिन वो बल नहीं रहा मेरे अंदर। एक छोटी सी घटना भी हो गई थी कि आदिवासी लोगों ने अर्जुन को हरा दिया, जिस अर्जुन ने भीष्म पितामह आदि लोगों की हरी बोल कर दिया, उन्होंने युद्ध में उनको नानी याद दिला दी। उस अर्जुन को जिन्होंने देवताओं देवलोक में जाके असुरों का वध कर दिया, उस अर्जुन को साधारण जंगल में रहने वाले आदिवासियों ने हरा दिया। तो अर्जुन समझ गया कृष्ण एक गांडीव का बल नहीं था, ये अर्जुन का बल नहीं था, कृष्ण का बल था जो मेरे जो मुझमें काम कर रहा था। तब मुंह लटकाए हुए अर्जुन पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं, महाराज युधिष्ठिर के पास खबर लेके। और तब युधिष्ठिर महाराज उसी समय युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि द्वापर कलियुग का प्रभाव शुरू हो चुका है। जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने ये धराधाम छोड़ दिया उसी समय कलयुग का प्रभाव चालू हो गया। कलयुग पहले से आ चुका था लेकिन उसका प्रभाव नहीं हो रहा था कि भगवान के चरण कमल इस पृथ्वी पर थे, उस कारण से कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही तो युधिष्ठिर महाराज को सब तरह से इस संसार में सब तरह से दोष दिखने लग गए। जो लोगों में कपट दिखने गया और सदाचार का पालन नहीं हो रहा था, ब्राह्मणों का ब्राह्मण तो नष्ट हो रहा था, कोई ब्रह्मचार्य व्रत का ठीक से पालन नहीं कर रहा था, इस तरह से सब तरह से दोष दिखाई दे रहे थे। पृथ्वी में भूकंप आ रहे थे, सुनामी आ रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। निश्चित युधिष्ठिर महाराज समझ गए, निश्चित रूप से जो डाउट था उनके हृदय में कि क्या भगवान से कृष्ण चले गए। उसी समय अर्जुन मुंह लटकाते हुए वहां पर आता है, अर्जुन उससे बात करता है, अर्जुन बताता है कि प्रभु देवकी नंदन कृष्ण ने हमें ठग दिया, बिना बताए चले गए। तो जब भगवान चले गए तो पांडव ने निर्णय किया कि अब मुझे भी नहीं, अब हम क्या करेंगे। तो पांडवों ने भी संन्यास ले लिया, और पांडव ने भी इस पृथ्वी को संन्यास लेकर छोड़ दिया, तो पांडव के बेटे सब, सब सब सारे लोग चले गए। उस समय उन्होंने अपना सब कुछ महाराज परीक्षित को दे दिया। मुझे मुख्य कथा परीक्षित के बारे में समझाने के लिए ये सब बताना पड़ा मुझे, तो परीक्षित का जीवन के बारे में बताना था। जब कुंती महारानी स्तुति कर रही थी इसकी भगवान की द्वार, जब भगवान द्वारका जा रहे थे उस समय कुंती महारानी स्तुति कर रही थी, उस समय घटना घटी थी। अश्वत्थामा जीवित था और अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े थे। पांडवों का वंश खत्म होने वाला था, लेकिन एक वंशज बचा था, वो था अभिमन्यु नंदन परीक्षित। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित था और उस समय अश्वत्थामा को पांडवों का वंश खत्म करना था, तो अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े थे। ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है जिसका कोई तोड़ नहीं है, बिना सुदर्शन चक्र के भगवान के सुदर्शन चक्र के अलावा और कोई तोड़ नहीं है। तो अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े, 5 पांडवों के लिए और 6वां परीक्षित के लिए। तो उसी क्षण उस समय जब भगवान थे वहां पर और वहां पर पांडव लोग थे, अकस्मात जब 5 तेजस्वी बाण ब्रह्मास्त्र को आते हुए देख, पांडव लोग तो कुछ कर भी नहीं पाए, अस्त्र कहां उठाएंगे, क्या प्रतिकार करेंगे, जब बाण है बाण मारने के लिए, कोई बंदूक ले उठा ले, मान लीजिए कोई बंदूक उठा ले तो कितना समय होगा, आपके निशाना लगा दिया है और गोली भी चला चुका है, तो कितना समय होगा आप लोगों के पास, कुछ समय नहीं होगा। बंदूक उठा चुकी है, निशाना साध चुका है और गोली भी चल चुकी है, तो गोली चलने के बाद लगने के लिए कितना समय होता है, कुछ नहीं। ऐसे समय में क्या कोई करेगा, तो भगवान ने जब देखा कि मेरे भक्त पांडव लोग कुछ नहीं कर असहाय है, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस 5 ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया। भगवान ने रक्षा की, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांडव को असहाय देखते हुए कुछ नहीं करे, तो उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की। और उस समय उत्तरा दौड़ते हुए आई, प्रभो 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 प्रभु, मैं इस ब्रह्मास्त्र से जल रही हूँ, मुझे जलने दीजिए प्रभु, लेकिन मेरे घरों में मेरे जो पुत्र है उसकी रक्षा कीजिए, ये पांडव का वंशज है इसकी रक्षा कीजिए, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं जल रही हूँ। तो भगवान ने सबके सामने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, भगवान तो सामने थे ही, लेकिन तो और एक अपने आप को विस्तारित करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उस उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हुए उनकी जो कोमोदी गदा थी, उस माध्यम से उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर परीक्षित महाराज के गर्भ में रक्षा की। इस तरह से भगवान ने अपने भक्त पांडवों के पुत्र, तो भगवान की शरणागति लेने के बाद भगवान अपनी रक्षा नहीं करते, लेकिन हमारे परिवार वालों की भी रक्षा करते हैं, ये सीखने वाली बात है। और जब परीक्षित महाराज ब्रह्मास्त्र के तेज से बच गए, भगवान उनकी रक्षा की, तो वो परीक्षित महाराज जैसे परीक्षित महाराज ने राज, वही राज जो पांडव ने शरीर छोड़ दिया, संन्यास लिए बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो राजा कौन बने, परीक्षित महाराज राजा बने। तो परीक्षित महाराज जब थे तब कलयुग आ चुका था, क्या आ चुका था, कलयुग आ चुका था। तो एक तो कलयुग में सबसे बड़ा जो घिनौना कार्य वो है गौ हत्या होती रहती है, गायों की हत्या होती रहती है। तो परीक्षित महाराज एक बार दिग्विजय करते हुए सारे अपने राज्य में घूम रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल बहुत दुखी अवस्था में एक दूसरे चर्चा कर रहे थे। एक जो बैल था वो धर्म था और जो गाय थी वो पृथ्वी थी, और दोनों चर्चा कर रहे थे क्योंकि कलयुग आ गया, कली का प्रभाव की वजह से लोग गाय और बैल, जो गाय को इज्जत ही नहीं होती, जो भगवान को सबसे प्रिय है वो गाय है, यदि गौ की हत्या हो गई, ब्राह्मण और वैष्णव को यदि किसी ने तकलीफ दे दी, बस तो उसका विनाश निश्चित है। भगवान या कान ये सहन नहीं कर सकता कि गाय कटी हो। आज आज विदेशों में, जापान, चाइना में बड़े बड़े सुनामी आती रहती है, ये सब होता रहता है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो तो होना ही है, क्योंकि जहां गाय कटती है वहां पर ऐसा होना ही है। इसलिए ये सब चीज के लिए प्रोत्साहन भी नहीं करना चाहिए। तो कलयुग आ चुका था, तो महाराज परीक्षित ने कली को मूर्तिमंत, तो कलयुग एक व्यक्तिगत एक पर्सनैलिटी है, तो जो महाराज परीक्षित दिग्विजय करते घूम रहे थे, तो उन्होंने इन दोनों का संवाद सुना, किसका, धर्म का और पृथ्वी का, और तो पता चले कली नाम कली जो प्रभाव डाल रहा है उसको पकड़ना पड़ेगा। तो महाराज परीक्षित ने कली को पकड़ लिया, कलयुग को पकड़ लिया, और कहा कि तू क्या समझ रहा है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ चले गए, पांडव चले गए, तो तू अपना प्रभाव दिखाएगा, ये परीक्षित अब तक जीवित है और मेरे होते हुए तेरा प्रभाव यहाँ पर मेरे राज्य में नहीं चलना चाहिए, तो अपना सारा प्रभाव हटा ले, लेकिन प्रभु मैं आपकी शरण में, मेरा युग है, मुझे तो आना ही है, तो मुझे स्थान दे दीजिए। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को चार स्थान दिए, श्रील प्रभुपाद जी इन चारों चीजों को मना करते करने को, नो मीट ईटिंग, जहां पे मांसाहार होता है वहां पे कली का रिवाज होता है, नो इंटॉक्सिकेशन, शराब इत्यादि नहीं पीना, ये चार नरक के द्वार है। तीसरा, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना। पांडवों के जीवन से भी हमें सीखने को मिलता है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, और एक जुआ खेलना ये नरक का द्वार है। चौथा, अवैध संग नहीं करना, जो स्त्रिया है उनको अपने पति से एकनिष्ठ रहना है और उनकी सेवा करनी है, और जो पति है उनको भी अपने एकनिष्ठ रहना है और विवाह के बाहर नहीं जाना है। ये चार नरक के द्वार है। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग से इतना ही कहा कि तुझे चार स्थान देता हूं मैं, ये चारों स्थानों में तू रह सकता है, तो जहां ये चारों चीजें होती रहती है वहां पर कली का निवास करता है। कौन सी जाति से मैं बोलेगा, आप मत बोलो, एक एक कोई बताओ, जिसको जैसा याद है उसको एक एक बता सकता है। गैम्बलिंग करना कि नहीं करना?
नहीं करना।
ओके, और नो अल्कोहल। ओके, आप लोग कुछ याद है, आप लोग हो मेरे साथ, नो मीट, मीट ईटिंग, और कुछ,
रिस्पेक्ट एंड नॉट टू
गो आउटसाइड मैन, नो इलिसिट सेक्स, नॉट टू गो आउटसाइड मैन, वन शुड रिमेन चेस्ट विद वंस वाइफ और हस्बैंड। तो महाराज परीक्षित से एक और रिक्वेस्ट की कलयुग ने, कहा कि मुझे एक और स्थान चाहिए आपसे, यस, तो उन्होंने कहा गोल्ड में, मुझे सोना है, इसमें भी कली का निवास है, जिसके घर पे, जिसके पास अधिक सोना है उसका वो भ्रमित रहता है, कि हम भक्त लोग ये सब पहनते नहीं है, मतलब ये सब चीज हम लोग पहनते नहीं है, टेंशन लेते नहीं है सब चीजों का, चार नियमों में तो पालन कर लेते हैं, लेकिन सोना भी हम लोग पहनते नहीं है। मेरी माँ तो खूब पीछे पड़ती, बेटा पहन ले, पहले नहीं पहनना है माँ, जिस पर बोला है कि कली निवास करता है उसको धारण करके क्यों पंगा लेना है, तो मति भ्रमित हो जाएगी। तो मंगलसूत्र इत्यादि ये चलेगा कि ये स्त्रियों के लिए मंगल चिन्ह रहता है, तो वो ठीक है, लेकिन सोने में भी कली का निवास है। आजकल लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, तो कली में हमने इन्वेस्ट कली में कर रहे हैं। कली का अर्थ कला होगा, उस वजह से कला, उस सोने की ये पांच चीजें ऐसी, इससे कला होना ही होना है। आप देखिए, जिसके घर पे कोई शराब पीकर आता है उसके घर पे झगड़ा होता है, जो जिसके घर मांसाहार है, भाई तुम घर पे किसी का हत्या करके उसको खा रहे हो, तो तुम्हारे चेतना क्या शुद्ध हो जाएगी? नहीं, तुम्हारे चेतना में मार काट की भावना आएगी, तो घर पे झगड़ा होंगे। जब जुआ खेलेंगे तो जुआ में सारा धन संपत्ति लगा देंगे, जुए में भी वही हालत है, जुए में झगड़ा होगा घर पे, और अवैध स्त्री संग करेंगे, पत्नी बिचारी घर पे बड़ी और पति बाहर किसी और के साथ जा रहा है, तो घर उससे भी झगड़ा होगा। तो ये चार स्थान ऐसे, जब कली निवास करता है, ये चार स्थान अगर अच्छे से पालन करेंगे तो आप तो उसको मनुष्य कहा जाएगा, तो उसको गृहस्थ कहा जाएगा। अन्यथा उसका जीवन तो पशु जैसा जीवन है, उसको क्या गृहस्थ कहेंगे, क्या मनुष्य कहेंगे। अगर ये चार चीजों का कोई पालन करेगा उसको मनुष्य कहा जाता है, लेकिन ये चार चीजें तो पालन नहीं करता, उसको मनुष्य कहने का उसको क्या कहेंगे मनुष्य। जो पांचों चीज छोड़ दीजिए, इन चारों का तो कितने तो परीक्षित ने अपने पांच स्थान ले लिए, परीक्षित ने पांच स्थान कलयुग को दे दिए, और परीक्षित अपना राज्य करने लग गए। उसके बाद एक घटना परीक्षित के जीवन में घटी। अब मैं आपको ऐसी घटना बताना चाहता हूं जिससे कि सारे संसार का उद्धार हो गया। सारे संसार का उद्धार किस तरह से हुआ ये हम आपको बताना चाहते हैं। परीक्षित महाराज एक बार जंगल में शिकार कर रहे थे। अब प्रश्न पूछ सकते कि राजा लोग शिकार भी करते हैं, राजा लोग शिकार करते हैं, सम्मानगंज शिकार भी करता है तो पता है हम लोगों को, लेकिन राजा लोग पहले के राजा लोग शिकार भी करते थे ये जानना है। पहले जंगलों में साधु लोग निवास करते थे। एक तो जो नैष्टिक ब्रह्मचार्य जो बचपन से साधु है, और दूसरे जो साधु बने हैं वानप्रस्थ लिया है, वो लोग भी वन में रहते थे, तो लोग तपस्या करते थे, है ना। तो उन लोगों के लिए, उन लोगों की रक्षा करने के लिए किससे रक्षा है, जंगली वन जीवों से। वो एरिया जहां पर वो लोग रहते हैं, साधु लोग भजन करते हैं, उस स्थान में कोई भी जंगली जीव ना हो, इसलिए राजा का कर्तव्य था कि वहां पर जो साधु लोग भजन करते हैं उनकी रक्षा करें। ये राजा क्षत्रियों कर्तव्य था कि साधुओं की रक्षा करें, इसलिए क्षत्रिय राजा वहां पर जाते थे जंगलों में और शिकार करते थे। तो ये उनका मुख्य इंटेंशन था कि शिकार करने के पीछे, और कुछ नहीं। जो धर्मपरायण राजा थे उनकी रक्षा साधुओं की रक्षा करना, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, तो उनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। कि परीक्षित महाराज भूखे प्यासे जंगल में गए थे, और वहां पे एक ऋषि बैठे हुए थे भगवान का ध्यान करते हुए। तो महाराज परीक्षित को ये लगा कि ये नाटक कर रहा है, इनको तभी समाधि में बैठा था जब मैं आया हूं, जब मैं आया हूं उनके द्वार पर। अगर मान लीजिए आपके घर पे कोई अतिथि आ जाए और आप सो रहे हैं, अरे बेल मार रहा है, जगाने का प्रयास कर रहे हैं, हम तो सो रहे हैं, उठने का उठ ही नहीं रहे हम लोग, मतलब हम लोग सोने का नाटक कर रहे हैं। जब बेल मार कर भी सब कुछ करके लगा, जब जान लेंगे कोई अतिथि आया हुआ है, लेकिन वो दरवाजा खोल नहीं रहे हैं, तो नाटक कर रहे हैं, तो अतिथि तो चिढ़ जाएगा। उसी तरह से महाराज परीक्षित भी चिढ़ गए, ऊपर से महाराज परीक्षित भूखे और प्यासे भी थे। तो महाराज परीक्षित ने, वहां पर एक मरा हुआ सांप था, वो सांप उन्होंने उठाकर उस श्रमिक ऋषि गले में डाल दिया, गले में डाल दिया और वहां से चले गए। उसके बाद ये जो घटना थी, ये उनका एक पुत्र था श्रृंगी, उस श्रृंगी के कुछ मित्रों ने देख लिया और श्रृंगी को जाके बोल दिया कि श्रृंगी तुम्हारे पिताजी के साथ ये घटना हुई, महाराज परीक्षित ने तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तब श्रृंगी को आया गुस्सा, श्रृंगी बोलने लगा कि एक कुत्तों को कब से मालिक के थाली में खाने की इच्छा हो गई, एक क्षत्रिय लोग होते हैं, ये कुत्ते हैं, इनका स्थान द्वार पर है, इनकी कैसे हिम्मत हो गई कि अंदर, पहले में तो अंदर प्रवेश कैसे किया उन्होंने, और उनकी इतनी मजा कि मेरे पिता जो भगवान के ध्यान में बैठे उन पर मरा हुआ सांप डाल दिया। महाराज परीक्षित ये सोच रहे कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद क्या ये धर्म खत्म हो गया है, कोई धर्म पराया नहीं है, लगता है उनको उनके होश ठिकाने लाने पड़ेंगे। हे मेरे मित्रों, अपने बालकों से कहता है, हे मेरे मित्रों, मेरा तपोबल देखो। तो पानी, वहां पर पानी लेता है और संकल्प करता है कि आज से 7 दिन के बाद तक्षक नाम का सर्प आकर महाराज परीक्षित को डस जाएगा। देखिए, जो महाराज परीक्षित की रक्षा, जिस महाराज परीक्षित की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में की थी, जो महाराज परीक्षित पांडवों का वंशज था, जिस महाराज परीक्षित ने कलयुग का दमन किया, वो महाराज परीक्षित को आज एक शाप मिल गया। बहुत बड़ी बात थी, अहंकार मच गया, सारे सब जगह सारे न्यूज चैनल्स में आ गया कि महाराज परीक्षित will be dead after 7 days. सब जगह एकदम टाइम्स अप इंडिया, मतलब सब जगह ब्रेकिंग न्यूज हो गई. अभी आज के समय में तो ये सब मीडिया फीडिया है, उस समय यानी मन से खबर पहुंचाई जाती थी. एक साधु और दूसरे साधु से उसको बात करनी होती थी तो मन के द्वारा बात करता था. अरे भाई अभी हमारे पास टेलीफोन है, यदि यहां से मैं अमेरिका कॉल कर सकता हूँ इसी समय, और अमेरिका में कोई मेरा मित्र है तो उससे बात कर सकता हूँ. तो क्या हमारे पूर्व के साधु में क्षमता नहीं थी कि मन के द्वारा दूसरे साधु से बात करें? स्वाभाविक थी. तो मानसिक रूप से सब जगह ये खबर फैलाई गई कि महाराज परीक्षित को श्राप मिल गया है. तो सब लोग उस स्थान पर जाना चाहते जहां पर महाराज परीक्षित थे. तो महाराज परीक्षित ने अपना, जब महाराज परीक्षित ने यह सुना कि उन्हें श्राप मिला है, महाराज परीक्षित ने जब ये सुना कि उन्हें श्राप मिला हुआ है, तब महाराज परीक्षित ने अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया. आज हमें पता चल जाए कि आपके एक साल के अंदर मृत्यु होने वाली है तो तुरंत यूरोप अमेरिका का टिकट कर लेंगे, भाई जरा देख तो लूं, एक साल में मरने वाला हूं थोड़ा देख तो लूं यूरोप कैसा है अमेरिका कैसा है, बैंक बैलेंस कितना है जरा बढ़ा लूं, पैसा शेयर मार्केट में डालूं, इसमें डालूं उसमें डालूं, सोना खरीदूं क्या करूं, डबल कैसे होगा, प्रॉपर्टी खरीदूं क्या खरीदूं, एक साल में डबल कैसे हो जाएगा? अरे तुम मरने वाले हो भाई, मरते हो तुमको ये सब ले नहीं जाना है. फिर भी इतना कुछ करने का प्रयास करेगा, इतना करने का प्रयास करेगा कि एक साल से मतलब तुम्हारी एक साल मृत्यु होने वाली है, तो वो इंद्रिय भोगों में लग जाएगा. जो भोग उसे नहीं भोगे उसको भोगने में लग जाएगा, लेकिन ये चिंता नहीं करेगा कि अरे मैं मरने के बाद कहाँ जाने वाला हूं. मरने के बाद, मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है इसकी चिंता नहीं है किसी को. जब तक जी रहे तब तक जियो. लोन निकाल निकाल कर टूर मारो, लोन निकाल निकाल कर अमेरिका जाओ, लोन निकाल निकाल कर सब करो, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होने वाला है किसी की चिंता, किसी को चिंता नहीं. हम लोग ऐसे जी रहे जैसे अजर अमर है, मृत्यु होने ही नहीं वाली है. हम देख रहे हैं कि आसपास में कोई चाचा चाची कोई बूढ़ा बूढ़ी सब कोई मर रहा है, लेकिन हमें चिंता ही नहीं है. अरे हम लोग तो अजर अमर है, हमें कोई खाने वाला है. आज यहाँ पे जो बूढ़ी माता बैठी है वो लोग ऐसे ही विचार कर रहे थे कुछ समय पहले, अरे हम तो अजर अमर है, सब तरह के भोग भोग रहे, लेकिन आज जब घुटने चल नहीं पा रहे, जब पीठ अकड़ी हुई है, जब डुप्लीकेट दांत लगा के खाना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में समझ रहे कि अरे सब कितना समय व्यर्थ चला गया जीवन का. जो मनुष्य शरीर भगवान को प्राप्त करने के मिला है वो मनुष्य शरीर किसमें लगा दिए? इंद्रिय भोगों में. अरे इंद्रिय भोग तो पशु पक्षियों को भी मिलते हैं. तो हमारा जीवन पशु जैसा जीवन बीत गया, पूरा का पूरा 40-50-70 साल की आयु बीत गई, लेकिन हमने किया क्या? वही किया जो पशु लोग गाय कुत्ते बिल्ली भैंस सब रास्ते में करते रहते, वही हम लोगों ने किया. थोड़ा उनका स्टैंडर्ड जो है हम लोग का थोड़ा हाई है. वो लोग रास्ते में सोते हैं, हम लोग यहाँ सोते हैं, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग. वो लोग भी खाने के पीछे दिन भर रहते हैं, हम लोग भी खाने के पीछे दिन भर रहते हैं. लेवल थोड़ा अलग अलग है मेटिंग. वो लोग भी शादी शुदा करके बच्चे पैदा करते हैं, हम लोग भी वही करते हैं, लेकिन वो लोग रास्ते में रहते हैं, हम लोग घर में रहते हैं. डिपेंडिंग मेरी संपत्ति को मेरे बच्चों की मेरी रक्षा, इसकी रक्षा उसकी रक्षा, प्रॉपर्टी का संग्रह, ये संग्रह किस तरह से अपना धन बचाने के पीछे डिपेंड करते रहते हैं. वो लोग भी करता है, हम लोग भी करते हैं, ईटिंग स्लीपिंग एंड डिपेंडिंग. तो ये चार चीज वो भी कर रहे हैं हम, तो हमारा ये मनुष्य शरीर मिलकर फायदा क्या? परीक्षित महाराज ने, जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला तो परीक्षित महाराज ने इंचार किया कि अब इस साल भर के अंदर मुझे अपना जीवन का जीवन साधना करना है. इससे उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया? राजमुकुट उतार दिया, राजवेश उतार दिया, और क्या किया? गंगा के तट पर चले गए. तो हम लोगों को भी यदि भारी रूप से अगर अपना राजमुकुट नहीं निकाल सकते, हृदय से तो निकाल दीजिए. हृदय से जानिए कि हम लोग ये शरीर नहीं है, आत्मा है, हमारा शरीर छूटने वाला है दिन प्रतिदिन. वी आर गेटिंग ओल्ड. हम लोग कोई पूछता है तुम्हारी उम्र क्या है, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड. आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, आई एम ओल्ड. हो रहे हैं, हम लोग मूढ़े हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। एक एक दिन हमारे शरीर की, ये शरीर जितने समय तक है, हमारे 50 साल ये शरीर रहने वाला है, तो एक एक दिन उस 50 साल की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास समय बहुत कम है। और मनुष्य शरीर मिला है इस संसार बंधन से निकलने के लिए, संसार चक्र से निकलने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान को समझने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। तो महाराज परीक्षित ने साधु का वेश धारण किया और गंगा जी के तट पर बैठ गए। और उसी समय वहां पर ये जो ऋषि मुनि थे जिनको खबर पहुंच गई थी सैटेलाइट से, वो सारे ऋषि मुनि वहां पर आ गए एक एक करके। देवर्षि नारद, वेद व्यास जी, बड़े बड़े असिद्ध देवल, सब बड़े बड़े जो ऋषि थे, अगस्त ऋषि, सारे बड़े बड़े ऋषि वहां पर आ गए। परशुराम जी अपने शिष्यों के साथ आ गए, सब लोग वहां पर आके बैठ गए। वे मजा करने नहीं आए थे, वे देखना चाहते थे कि भगवान का भक्त कैसे शरीर छोड़ता है। भगवान के भक्त पर संकट आता है और एक साधारण मनुष्य पर संकट आता है, दोनों में बहुत अंतर है। साधारण मनुष्य तो अपने कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार शरीर छोड़ देता है, लेकिन भगवान की भक्ति अगर आप करते हैं तो उसका शरीर छूटना साधारण नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करता है अपने इस शरीर के साथ, वो भगवान के धाम जाता है। तो उसमें और सामान्य मनुष्य की मृत्यु में बहुत अंतर होता है। इतने सारे लोग मरते हैं, लेकिन ये सारे देवर्षि ऋषि लोग केवल महाराज परीक्षित की मृत्यु देखने के लिए क्यों आए? क्योंकि वो भगवान को समर्पित भक्त थे, अपना उन्होंने जीवन भगवान को समर्पित किया था, ये देखने के लिए कैसे ये छोड़ते हैं शरीर, भगवान इनके लिए अब क्या करते हैं। तब महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं इन सारे ऋषियों से कि हे महात्मा लोग, मैं आपके चरणों में विनती करता हूं, मुझे ये चीज बताइए कि जिसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है उसको क्या करना चाहिए। ये सब प्रश्न हम लोगों को भी अपने आप को पूछना चाहिए कि अरे मेरी मृत्यु होने वाली है तो मुझे क्या करना चाहिए। ये प्रश्न पूछना जिस महाराज परीक्षित ने पूछा, तब उसी समय वहां पर व्यास जी के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास के पुत्र शुकदेव गोस्वामी वहां पर आते हैं। कौन आते हैं वहां पर? शुकदेव गोस्वामी वहां पर आते हैं। और शुकदेव गोस्वामी वहां पर आते हैं और सारे ऋषि लोग वहां पर तुरंत खड़े हो जाते हैं। एक 16 साल का बालक वहां पर आता है और ये हजारों साल से, जो जिनकी उम्र हजारों साल, काफी साल से जैसा ऋषि लोग हैं, लेकिन ये 16 साल के सुखदेव गोस्वामी को देखकर सब खड़े हो जाते हैं सम्मान के लिए। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी एक महाभागवत है, भगवान के प्रेमी भक्त है। तो सारे ऋषि लोग महाराज परीक्षित से कहते हैं, वो आ गया आपका उत्तर, आपका उत्तर सामने आ गया। ये सब लोग जो महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा था आपस में चर्चा करने लगे, अरे ऐसा कौन सा कार्य है यार, एक दूसरे से ऋषि लोग चर्चा कर रहे थे, 7 दिन में भगवान के धाम की प्राप्ति करना, क्या करना चाहिए, सब चर्चा करने लगे। और उसी समय वहां पर शुभदेव गोस्वामी उपस्थित हुए, तो सम्मान पूर्वक सब खड़े हुए और सारे ऋषि ने कहा, आ गया आपका उत्तर परीक्षित जी, जाइए शुभदेव गोस्वामी की सत्कार के जीवन का, वो आपको उत्तर देंगे। तो शुभदेव गोस्वामी को एक स्पेशल आसन दिया, स्पेशल आसन सबके लिए, तो आसन सबके लिए, सबको तो था, अभी महाराज परीक्षित राजा तो थे नहीं कि सारा विधिवत सारी व्यवस्था करें, लेकिन उसमें भी महाराज परीक्षित ने शुभदेव गोस्वामी को स्पेशल आसन दिया और उनकी विधिवत पूजा की। जिस तरह से भगवान की पूजा की जाती वैसे ही भगवान के भक्तों की पूजा करनी चाहिए, जो महान महाभगवान के प्रेमी भक्त उनकी ऐसी पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के पश्चात महाराज परीक्षित ने शुभदेव गोस्वामी को वही प्रश्न किया कि हे प्रभु, 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मुझे क्या करना चाहिए। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से चले गए थे, उस समय जाने से पहले वो उद्धव जी से मिले थे, प्रभास में। तो उद्धव जी भगवान से कहते प्रभु आप चले जाएंगे तो आपके जाने के बाद क्या, आप रुक जाइए, कलयुग आने वाला, आप रुक जाइए। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो उद्धव, मेरे जाने के बाद मैं श्रीमद भागवत के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। तो श्रीमद भागवत मेरा ही स्वरूप है, तो ग्रंथ नहीं है, भगवान पुस्तक के रूप में जो अवतार ग्रहण किए हैं कलयुग के लिए वो है श्रीमद भागवत। तो श्रीमद भागवत सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्रीमद भागवत परीक्षित श्रीमद भागवत, मैं तुम्हें सुनाऊंगा श्रीमद भागवत। तो 7 दिन महाराज परीक्षित ने अनशन का व्रत ले लिया था, उनको पानी भी नहीं पीना था ना उनको कि खाने पीने के तो सारा कांड हुआ, और अब पानी पिएंगे नहीं, उन्होंने सब 7 दिन बचे हैं तो उन्होंने अनशन व्रत ले लिया, ना कोई कुछ, ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, केवल वही कार्य करना है जिससे मुझे भगवत प्राप्ति हो। तो महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी के बुक से दिन रात श्रीमद भागवत का श्रवण किया। बीच में दशम स्कंद के आसपास जब भगवान कृष्ण की लीलाएं शुरू होने वाली थी, चर्चा चलने वाली थी, तब तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज जरा खा पी लीजिए। बोले नहीं प्रभु, आपके मुख से श्रीमद भागवत सुनकर मेरी जो तृष्णा है वो सब खत्म हो गई है, संसार को भोगने की जो लालसा है वो खत्म हो गई है, मुझे संसार से कोई मतलब ही नहीं है अभी, मुझे बस किसी तरह से मुझे भगवान कृष्ण के चरण कमलों में जाना है, तो आप मुझे अधिक से अधिक श्रवण कराइए भगवान के गुणों का, ताकि उनको सुनकर मेरे हृदय में जो आसक्ति जो संसार के लिए वो हट जाए, और मेरे हृदय में जो आसक्ति संसार के लिए स्त्री पुत्र आदि के लिए वो हटकर कृष्ण के लिए हो जाए। तो परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात कथा सुन लेते हैं, और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे महाराज परीक्षित अब ये कथा में विश्राम करता हूँ, अब विश्राम होता, अब मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर जो मैंने तुमको कथाएं सुनाई है श्रीमद भागवत के माध्यम से उन सभी चरित्रों का स्मरण करो, उन सभी चरित्रों का क्या करो, स्मरण करो, और भगवान के धाम चले जाओ, तक्षक आने से पहले चले जाओ। तो सुखदेव गोस्वामी तो वहां से चले गए, और महाराज परीक्षित जो जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया था उसका चिंतन करते हुए समाधि में बैठ गए, भगवान की लीलाओं का स्मरण, और स्मरण करते 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 महाराज परीक्षित ने अपना शरीर छोड़ दिया, छोड़कर भगवान के धाम चले गए। अरे तो श्राप मिला था उनको, श्राप गया भाड़ में, श्राप क्या उखाड़ेगा भगवान के भक्तों का, भगवान के भक्तों की मृत्यु के श्राप से होती है ना, ऐसे किसी श्राप में सामर्थ्य नहीं है, ऐसे किसी चीज में सब वस्तु में सामर्थ्य नहीं कि भगवान के भक्तों से कोई पंगा ले सके, भगवान भक्ति जीत गई, श्रीमद भागवत जीत गया, महाराज परीक्षित ने तक्षक के आने से पहले महाराज परीक्षित ने शरीर छोड़ दिया और भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लिया, और तक्षक ने आगे केवल डेड बॉडी को चलाया, महाराज परीक्षित तो भगवान के धाम जा चुके थे। तो हम लोगों के पास 7 दिन से ज्यादा ही है, 7 दिन से ज्यादा ही है, किसी के सिवा 7 दिन से ज्यादा समय है अपने पास है, पता है, तो भी आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्या करने की तैयारी करने की, समर्पण करने की, भगवान से कहिए, भगवान से है प्रभु मैं आज तक अपने आप को भोक्ता समझता था, मैं आज तक यही समझता था कि ये स्त्री पुत्र का मैं स्वामी हूं, मैं आज तक यही समझा कि ये जो प्रॉपर्टी है 20-25 करोड़ की इसका मैं स्वामी हूं, प्रभु ये सब भोगते 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 मैं थक गया हूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं समझ गया हूं कि अब मैं आपका दास हूं, तो मुझे केवल आपकी दासता करनी, मुझे आपकी भक्ति करनी है, हे प्रभु कृपा करके मुझे अपनी भक्ति करने का अवसर प्रदान कीजिए, मेरा मनुष्य शरीर का कितना सारा समय व्यर्थ चला गया, अब थोड़ा सा समय बचा है प्रभु, मुझे आपकी भक्ति में निकालना है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अपने इंडिविजुअल लेवल पे हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान कृपया करके मुझे अपने भक्तों की संगति में रखो, अपने भक्तों की संगति, जो आपकी भक्ति करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं ऐसे भक्तों की संगति मुझे आओ, मुझे लेकर जाओ जी। तो इस तरह से जब प्रार्थना करेंगे तब भगवान श्री कृष्ण आपका जीवन बदल देंगे और आपको भक्तों में संगति देंगे और आपके हृदय में, देखिए भगवान श्री कृष्ण रिजर्व्ड है, कॉपीराइट उनका रिजर्व्ड है, वो सबको बताते नहीं अपने बारे में। ऐसा नहीं कि अपने बल पर हम लोग भगवान को समझ लेंगे, भूल जाइए, हजारों लाखों जन्म बीत जाएंगे लेकिन कोई भगवान को नहीं समझ पाएगा। भगवान को समझने का उपाय है, जो भगवान के भक्त है उनसे संगति करो और उनकी कृपा से आपको क्या भगवान के बारे में समझने का अवसर प्राप्त होगा, उनकी भक्ति भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा और ये जो बची हुई आयु है वो अच्छे से आप बिताइए, भगवान की भक्ति बिताइए और भगवान के धाम चले जाएंगे। ये तो फिर से ये शरीर छूट जाएगा, फिर से कुत्ते बिल्ली का शरीर मिलेगा या मनुष्य शरीर मिलेगा, और मनुष्य शरीर मिल भी गया तो किसी माँ के घर में 9 महीने रहना पड़ेगा, बाहर आएंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी सब सीखना पड़ेगा, फिर स्कूल में जाना पड़ेगा, फिर सब फिर वही सब करना पड़ेगा। चलो वहां नहीं गए, कुत्ते बिल्ली की होली में चले गए, सुअरों जैसी हालत देखी, रास्ते में सुअर पड़े रहते रहना। अगर आप लोगों की इच्छा है कि वैसा सब बनने की तो जैसा जी रहे वैसे कंटिन्यू करो प्लीज, अपने मेरी बातों में मैंने जो कहा उसको भूल जाइए। अगर आप लोगों को कुत्ते बिल्ली की होली में जाने की इच्छा है, नरक में जाने की इच्छा है तो मेरी बातों को ध्यान मत दीजिए, लेकिन आप लोग वास्तव में अपना हित करना चाहते हैं ठीक है, तो जो भगवान के भक्त लोग यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं पास में कि प्रभु जी विनीत प्रभु यहाँ पर जुड़े हुए अपना इसी तरह जुड़े हुए हैं, तो इनके माध्यम से यहाँ पर ये प्रोग्राम रहता है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पर मैं तो यहाँ पर मुंबई में रहता हूँ, भोक्ता राम यज्ञ तपसा भगवान है, हम लोग भोक्ता नहीं है, एकल ईश्वर कृष्ण आरसव भृत्य, हम लोग सब भगवान के दास है, तो भगवान की दासता करने में आनंद है कि हम अपने पति की दासता करते हैं, तो पति स्त्री की दासता करता है, सबकी हम सबकी दासता ही कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई संतुष्ट हुआ हमारी दासता से? आप एक दूसरे की कितनी सेवा की है, बच्चों ने माओं की सेवा की है, माता पिता ने अपने बच्चों की सेवा की है, पति ने अपनी पत्नी की सेवा की है, बेचारा दिन भर मरता रहता है आता है लेकिन क्या मिलती है, गाली सुनने को, पत्नी दिन भर बेचारे घर में काम करते रहती है लेकिन पति से सो गए रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो बेचारा दिन भर उसी को संतुष्ट करने में लगे दिन कुछ, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं होता। अरे दासता ही करनी है तो कृष्ण की कीजिए, तो ये सारे संबंध वो भी ठीक हो जाएंगे। संसार की दासता खूब करके देख ली, क्या मिला? कुछ मिला। अब जरा बचा हुआ जीवन कृष्ण की दासता करके देखिए और तब मजा आएगा। हम लोग टेंशन नहीं लेते किसी बात का, हम लोग बिंदास रहते हैं क्योंकि हम लोग कृष्ण के दास हैं, हम लोग ने अपना जीवन कृष्ण को दे दिया तो कृष्ण हमारा सब मेंटेन करते हैं, हमें किसी बात का कोई टेंशन नहीं है और हमें विश्वास है कि हम ये शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम जाएंगे। आप लोग भी ऐसा कीजिए, अपना जीवन दे दीजिए कृष्ण, थोड़ा सा तो जीवन बचा है, हम लोग कितना सुख से है, कोई टेंशन नहीं है, तो भगवान आप लोगों की गारंटी ले रहे कि भाई जो आप लोगों के पास है उसको मेंटेन करूंगा और जो नहीं उसको लाके दूंगा, तुम्हारे सारे पापों को नाश कर दूंगा, बस मेरी शरण में एक बार आना। ठीक है, तो मैं आज यहीं पे विश्राम।